नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य बनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में बदलाव प्रस्तावित किया। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेट और ल्यूक ऑयल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास का निरीक्षण किया। भारत और नेपाल के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के उपयोग पर चर्चा की और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला आज नवी मुंबई में। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य बनाई गई है। बदलावों में फेसबुक और यूट्यूब जैसे व्यापक प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने का भी प्रावधान है, ताकि डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं से होने वाली हानि रोकी जा सके। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि डीप फेक ऑडियो, वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भ्रामक सामग्री से भारी नुकसान हो सकता है। इससे किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है, चुनावों पर असर डाला जा सकता है और वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता विनियम 2021 में प्रस्तावित संशोधन भ्रामक सूचनाओं के स्रोत का पता लगाने और जवाबदेही तय करने का स्पष्ट कानूनी आधार उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा विनियमों पर संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया मांगी है। प्रतिक्रिया अगले महीने की 6 तारीख तक itrules.consultation@meity.gov.in पर ईमेल की जा सकती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत के लिए रूस पर दबाव बनाना है।
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध समाप्त करने से इनकार के बाद नए प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तेल कंपनियां युद्ध के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने कहा कि अब तुरंत संघर्ष विराम लागू करने और निर्दोष लोगों की हत्या रोकने का समय आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हर बार अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन पर शांति समझौते के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस की दो प्रमुख ऊर्जा कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
जिनेवा में 151वीं अंतर संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान भारत और नेपाल के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मानवीय कार्रवाई, लोकतांत्रिक शासन और वैश्विक संस्थागत सुधारों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आम सभा में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ की पहल केवल वित्तीय क्षमता पर नहीं बल्कि ऐसे सार्थक सुधारों पर भी केंद्रित होनी चाहिए जो वैश्विक संस्थानों को अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएं। राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने विशेष उत्तरदायित्व सत्र में संसदीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता बढ़ाने में भारत द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की चर्चा की। जिनेवा में आयोजित 151वीं अंतर संसदीय संघ सम्मेलन में संकटकाल में मानवीय मानदंड कायम रखने और मानवीय कार्रवाई विषय पर विचार विमर्श में दुनिया भर के सांसद भाग ले रहे हैं। भारत ने कहा है कि आतंकवाद का प्रायोजक देश पाकिस्तान मानवाधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता के रूप में बेनकाब हो गया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कहा कि इस्लामाबाद समर्थित पहलगांव हमला दुनिया को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी नीति के उपकरण के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल का साक्षी है। श्री पुरी ने महासभा की मानवीय मामलों से संबंधित तीसरी समिति में संवाद के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को प्रासंगिक बताया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान को खुद अपना निरीक्षण करने की सलाह दी। श्री पुरी ने पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा कि वो अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए और सीमा के पार महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना बंद करे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास का निरीक्षण किया है। क्रेमलिन के कमान कक्ष से टेलीविजन पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सामरिक बलों का अभ्यास निर्धारित रूपरेखा के अनुसार संपन्न हुआ। अभ्यास के दौरान अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के निरीक्षण में संपन्न सामरिक परमाणु अभ्यास से रूसी सैन्य कमान की तैयारियों और नियंत्रण प्रणालियों तथा सैन्य कर्मियों के प्रचालनगत कौशल का परीक्षण हुआ। यमन की राजधानी सना में पिछले सप्ताह हूती विद्रोहियों द्वारा बंधक बनाए गए 12 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैंस क्रैनबर्ग के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि रिहा किए गए कर्मचारियों को कल संयुक्त राष्ट्र के विमान से वापस भेज दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 53 अन्य कर्मी अब भी हूती गुट के कब्जे में हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तुरंत और बिना शर्त इनकी रिहाई की अपील की है। अमरीकी सेना ने कथित मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 8वें पोत को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में डुबो दिया है। अमरीकी सेना के हमले में पोत पर सवार 2 लोग मारे गए हैं। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर घोषित आतंकवादी संगठन द्वारा प्रचालित पोत पर कोलंबिया प्रशांत तट के निकट यह हमला किया गया। इससे पहले सितंबर में अमरीकी सेना दक्षिणी कैरिबाइट जल क्षेत्र में वेनेजुएला से अमरीका में मादक पदार्थ ले जा रहे 7 पोत पर हमले कर चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय अमरीकी सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कपूर को कल दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्त किया। सीनेट द्वारा अनुमोदित 107 नामांकित व्यक्तियों में शामिल श्री कपूर भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के प्रमुख देशों के साथ अमरीका के राजनयिक संबंधों को देखेंगे। पॉल कपूर इससे पहले विदेश विभाग के नीति नियोजन स्टाफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नाइजीरिया के मेन लासा बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है। नाइजीरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक 8041 संदिग्ध मामलों में से 924 मामलों की पुष्टि नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि खराब स्वास्थ्य, कम जागरूकता और इलाज में लापरवाही से प्रकोप अफ्रीका में बढ़ रहा है। एजेंसी ने बताया कि मृत्यु दर पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% बढ़ी है। आयु वर्ग 21 से 30 वर्ष के बीच लोग इस संक्रमण से अधिक प्रभावित हुए हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। कल रात इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य बनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में बदलाव प्रस्तावित किए। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेट और ल्यूकॉइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास का निरीक्षण किया। भारत और नेपाल के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के उपयोग पर चर्चा की। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला आज नवी मुंबई में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।